الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا صلى الله. تو اس کلاس میں ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مثالی مرد میں سے پڑھتے ہیں، اور جو موضوع چل رہا ہے آج کل وہ ہے مثالی بھائی کا، کہ ایک بھائی کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ مثالی بھائی بن جائے، دوسروں کے لیے مثال بن جائے، اگزامپل بن جائے. انگریزی میں اس کو اگزیمپلری کہا جاتا ہے. تو ساری تفصیلات تو ہم نے اس بیان میں سے پڑھ لی، جتنے ڈسکس کرنے کا کی توفیق ملی وہ کر لیا. اب آخر میں جو ہے نا، حضرت نے اس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا جو کہ ایک غیر مسلم انگریز معاشرے کا واقعہ تھا، لیکن چونکہ موضوع سے متعلق تھا اور مقصد یہاں پر کیا ہے، بھائی بہن کی محبت اور اچھا بھائی بننا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یعنی کلمۃ الحکمۃ غالۃ المؤمن، یہ جو حکمت کا جو کلمہ ہوتا ہے نا، وہ تو مومن کے لیے ایک گمشدہ چیز ہوتی ہے، تو جہاں بھی اس کو مل جاتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے، ٹھیک ہے. حکمت کی چیز ہو جس کے اندر کی کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، اگر کوئی غیر شرعی بات ہے بھی اس کے اندر شامل تو اس کو آپ نکال دیں، ٹھیک ہے، اور جو شریعت کے مطابق ہے اس کو آپ لے لیں، لیکن حکمت کی بات اس وجہ سے نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ کافر معاشرے کی ہے یا کسی غلط بندے کی ہے، یا یہ تو دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہے تو بھی انسان کو قبول کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے. فلٹر کرنے کی جہاں ضرورت پڑے وہاں پہ ضرور فلٹر کرنا چاہیے، لیکن بندہ دے لینا چاہیے. تو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اس واقعے کو جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ اب واقعہ ہے، کہانی ہے، تو سب کو یاد، مجھے بھی پوری یاد نہیں ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے اس کہانی کے اندر ایگزیکٹلی کیا کیا پڑھا تھا. تو بہرحال ایک اتنا تو یاد ہے کہ گاؤں کے سیٹ اپ کے اندر یہ کہانی تھی، غالباً یورپ یا امریکہ کی کسی جگہ پر. تو بھائی بہن رہتے تھے، تو ہم نے جو واقعہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ بہن کے اوپر کوئی الزام آ رہا تھا، تو اس کو جو ہے نا وہ بھائی نے اپنے اوپر لے لیا تھا، حالانکہ چوری جو ہے وہ بہن سے ہو گئی تھی، باپ کے جو ہے وہ 50 سینٹس اس نے نکال لیے تھے، لیکن بھائی نے جو ہے نا وہ اپنے اوپر لے لیا، اور اس کی وجہ سے اس کو باپ کی بہت زیادہ ڈانٹ اور مار جو ہے برداشت کرنی پڑی، لیکن وہ بالکل خاموشی سے سہ گیا اور بہن کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کہانی کا اگلا حصہ کیا تھا کہ جب یہ لوگ اسکول سے گریجویٹ ہو گئے تو اب ان کو جو ہے وہ یونیورسٹی کالج وغیرہ بھیجنا تھا، تو باپ نے کہا کہ بھائی میں تو اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس تو صرف ایک بچے کو ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجنے کے پیسے ہیں، تو دونوں کو تو نہیں بھیج سکتا، ٹھیک ہے. تو اس نے قرضہ لینے کی بھی بات کری کہ میں چلو قرضہ لے کر کے دوسرے بچوں کو بھی بھیج لوں گا، لیکن کسی کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو قرضہ دے سکے، گاؤں کے اندر تو غریب لوگ ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ ایک ہی کا فیصلہ ہوا، تو بھائی نے کیا کہا، یہاں سے ہم بات آگے چلا رہے ہیں. تو امی نے پوچھا کہ تمہیں تو کہیں سے قرضہ بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے. ماں نے باپ سے پوچھا اب بچوں کا کیا کرو گے، تو ابو نے کہا کہ چونکہ ایک کے داخلے کے پیسے میرے پاس موجود ہیں لہٰذا میں دو میں سے ایک کو داخل کروا دوں گا. اسکرین شیئر غالباً کیا ہوا ہوگا، تو آپ لوگ اسکرین سے بھی پڑھ سکتے ہیں، 114 نمبر پیج ہے. تو کہنے لگی کہ جب ابو نے یہ الفاظ کہے تو میرا بھائی فوراً بولا کہ ابو بہن کو آپ کالج میں داخل کروا دیں، وہ تعلیم حاصل کر لے گی تو اچھے گھر میں اس کا رشتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو آج بھی جیسے ہمارے معاشرے میں بھی یہی سوچ ہے کہ اعلیٰ تعلیم ہوگی تو اچھا رشتہ ہوگا، تعلیم سے لوگ رشتہ کرتے ہیں، انسان سے رشتہ نہیں کرتے. تو بہرحال اچھی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، یہ سب ایک الگ ڈسکشن ہے جو کہ بہت دفعہ آپ لوگ سن ہی چکے ہوں گے. आती रहेगी वैसे आगे भी इसके इसका जिक्र। तो फरमाते हैं कि जी वो तालीम हासिल कर लेगी तो अच्छे घर में उसका रिश्ता हो जाएगा। अब्बू को तो ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे कि तुम बस, अच्छा गैर मुस्लिम मुआशरे की स्टोरी है, ठीक है, तो वहां पे तो जाहिर है फिर ईमानियात की तो बात वो नहीं करेंगे ना, वो तो फिर गैर मुस्लिम ही है, उन्हें उस हिसाब से दुनिया को देखना है। तो अब्बू को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि तुम मर दो, और बजाय इसके कि तुम तालीम हासिल करो और कल को अच्छी कमाई करने वाले बनो, तुम पढ़ाई से जान छुड़ा रहे हो, तुम सुस्त इंसान हो, तुम बहुत बुजदिल इंसान हो, ठीक है ना। लगता है इसने सूरह ताहा पढ़ी हुई थी, काफिर था लेकिन तूने सूरह ताहा पढ़ी हुई थी, और उसको ये बात पता थी कि अल्लाह ताला ने ना आदम अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया था कमाना, अम्मा हव्वा के तो जिम्मे नहीं लगाया था कमाना है। आज तो मुसलमान को ये बात पता नहीं होती, ठीक है, उस जमाने में तो माने की ये कहानी है, उसमें तो काफिर को भी बात इसने बिल्कुल सोलाने दुरुस्त करी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जो है वो कमाना चाहिए। यूं अब्बू ने उसको डांटना शुरू कर दिया। बहन ये कहानी सुना रही है ना कि मेरे बाप ने, अब्बू ने जो है वो भाई को डांटना शुरू कर दिया। तो भाई ने आगे से जवाब दिया कि अब्बू मैंने तो पढ़ना नहीं है, लिहाजा बहन को आप दाखिला दिलवा दें ताकि वो पढ़ सके। उसके इन वाज़ेह अल्फाज कहने पर अब्बू को और गुस्सा आया और कहने लगे कि अच्छा मैं देखता हूँ कि तुम कैसे कॉलेज में दाखिल नहीं होते। वालिद साहब ये अल्फाज कहते ही चले गए और हम बहन भाई कमरे में आके अपने बिस्तर पर, अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कहती है कि मुझे नींद तो नहीं आ रही थी और मैं महसूस कर रही थी कि मेरा भाई भी सो नहीं रहा बल्कि वो कुछ कर रहा है। मुझे समझ नहीं लगी कि वो क्या कर रहा है क्योंकि अंधेरा था। जब मैं सुबह उठी तो मुझे अपने सिरहाने के करीब एक नोट लिखा हुआ मिला जो भाई ने मुझे रुका लिखा था। इसमें भाई ने लिखा था कि मैं 17 साल का हो चुका हूं और इस काबिल हूं कि मजदूरी करके अपना पेट पाल सकूं, लिहाजा मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं ताकि अब्बू मुझे कॉलेज में दाखिल ना करवा सकें और उन्हें मजबूरन तुम्हें दाखिल करवाना पड़े। और फिर मुझे नसीहत की कि आप मेरी बड़ी बहन हो, आप दिल लगा के पढ़ना और यूनिवर्सिटी से अच्छी तालीम हासिल करना। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो उन्हीं कपड़ों में घर छोड़कर चला गया था, ठीक है। तो अब इसमें हमारे लिए क्या सबक है, ठीक है, जो कि मुसलमान हैं और नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो अपनी तालीमात को लेते हैं, है ना, काफिरों से, अमेरिका से और यूरोप से मुसलमान को लेना तो नहीं चाहिए, हम लेते हैं तो पता नहीं हम किस किस्म के मुसलमान हैं, लेकिन बहरहाल, लेकिन इसमें हमारे लिए क्या सबक है, इसमें हमारे लिए क्या सबक है जी, कोई आपसे अगर बताए। चले आपसे थोड़ा सा क्विज करते हैं कि ये जो इस बच्चे ने ये काम किया इसमें हमारे लिए क्या सबक है जी। कलिमतुल हिकमते वालतुल मुमिन, क्या है जी, कहानी पढ़ रहे हैं आपको और कोई काम नहीं मिला था कि क्लास में आकर कहानी सुने, या मुझे कोई और काम नहीं मिला था कि मैं आपको कहानियां सुनाऊं क्लास के अंदर, क्यों क्यों सुना रहे हैं, और हजरत को कोई काम नहीं मिला था, हजरत भी फालतू कसम के कहानियां सुना रहे हैं आकर के बयान के अंदर, इसलिए सुना रहे थे किसी मकसद से सुना रहे थे ना, तो वो मकसद क्या हासिल कर रहे हैं मुझसे, ईसार चने, माशाल्लाह ईसार एक बहुत अच्छा सबक मिल रहा है हमें, लेकिन और भी कोई और, तो ईसार इसने किया क्यों, बहनों के लिए कुर्बानी करना पड़े तो भाइयों को करनी चाहिए, ठीक है, इस एक पैराग्राफ में खास, ये तो पूरे पूरे बयान का यही मैसेज है जो जो आपने लिखा, बहनों के लिए कुर्बानी करना पड़े तो भाइयों को करना चाहिए, लेकिन खास इस पैराग्राफ या इस पार्ट से क्या मैसेज मिल रहा है, ये चले टाइम का ज्यादा नहीं हमारे पास, बहन के रिश्ते के लिए, बहन के रिश्ते के लिए सही बात है, हाँ बहन के रिश्ते के लिए इसने ये काम किया कि भाई एक और भी तो इसके अंदर बहुत अहम पैगाम है ना हमारे लिए, ठीक है ना, वो क्या है कि देखें इस लड़के ने मुखलिस फैसला किया मगर इल्म ना होने की वजह से गलत फैसला किया, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही आपने कही, ठीक है, लेकिन जिस चीज को इसने सही समझा, जिस चीज को इसने दूसरे के लिए मुफीद समझा, अपनी बहन के लिए फायदेमंद समझा, ठीक है ना, हमारे कुरान की तारीफ के मुताबिक तो ये बात सही नहीं है,
शरीयत के मुताबिक तो ये बात सही नहीं है, लेकिन इसने जिस चीज़ को सही समझा उसके लिए इसने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी, अपना घर छोड़ करके चला गया, ठीक है ना। जैसे आजकल इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है ना, जिसको उलमा भी बड़ा एड्रेस कर रहे हैं और हमने भी आपके साथ शेयर किया है, राइट। मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी करती हैं, ठीक है, और उसके लिए फिर वो क्या करती हैं, मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करती हैं या जो भी बगैर शादी की जिंदगी गुजारती हैं, क्या करना पड़ता है उसके लिए, उनको घर छोड़ के जाना पड़ता है, पूरे मुआशरे की, पूरे मुसलमानों की उनको जो है वो नाराजगी और दुश्मनी और सब कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन जिससे मोहब्बत करती हैं, जिसको मोहब्बत कहते हैं दुनियावी एतबार से, लस्ट जिसको कहते हैं, उसके लिए अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, राइट। हिंदू की खातिर जो है वो हिंदू लड़के की खातिर अपना घर छोड़ देती हैं, पूरे समाज से जो है वो टक्कर ले लेती हैं। लेकिन मुसलमान लड़की जो कि दीनदार होती है, राइट, वो एक पर्दा करने के लिए, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है पर्दा करना, वो पर्दे के लिए जो है ना वो अपने किसी भी रिश्तेदार को नाराज करने के लिए तैयार नहीं होती, राइट। दीन के लिए ना लड़का ना लड़की, कोई नाराज ना हो जाए भाई, अल्लाह का हुक्म मानने की वजह से जो है ना मैं कोई कोई कदम उठाऊं, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। आज ही का दौर है ना, राइट, 21वीं सदी ही है ना, ये तो नहीं कि 1400 साल पहले वो हिंदू वो मुसलमान लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया, आज के दौर में कि थोड़ी कदम उठा सकती है, नहीं, आज के दौर में ये लड़कियां कदम उठा रही हैं ना। तो मुसलमान लड़की जो दीनदार लड़की होती है वो क्यों नहीं कोई कदम उठा सकती, कि मैं अल्लाह का हुक्म मानूंगी, मैं जिस चीज को सही समझती हूँ उसके लिए मैं कुर्बानी दूंगी। ना मुसलमान लड़का कदम उठाता है, ना मुसलमान मर्द कोई कदम उठाता है, ना मुसलमान औरत कोई कदम उठाती है, राइट, इल्ला माशाल्लाह, सिवाय चंद गिनती पे कोई लोग ऐसे होंगे जो कुछ करते हैं, किसी की नाराजगी बर्दाश्त करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, अल्लाह की खातिर, जिस बात को हक समझते हैं उसकी खातिर जुबान से कितना बोलते हैं, हाँ ये हक है, यही हक है, राइट। तो इस लड़के से हमें एक सबक क्या मिलता है इस पैराग्राफ से, इस लड़के के बारे में, जिस चीज को सही समझा कि उसने उसके लिए कितना बड़ा कदम उठाया, ठीक है। आगे फरमाते हैं कि जब सुबह वालदैन पता चला तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा वालिद ने मुझे शहर में ले जाके यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया और मैं हॉस्टल में रहने लग गई। भाई घर छोड़ के चला गया था और उसने किसी तामीराती कारखाने में मजदूरी करना शुरू कर दी थी। तालीम तो उसके पास ज्यादा थी ही नहीं, 17 साल उसकी उम्र थी और उसने मेरी खातिर अपने मुस्तकबिल को तारीफ कर दिया। कहने लगी कि काफी अरसा हमारी मुलाकात नहीं हुई, मुझे यूनिवर्सिटी में कई साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी, मेरी रूममेट यानी कमरे की साथी आई और कहने लगी कि बाहर हॉस्टल के दरवाजे पर एक नौजवान लड़का खड़ा है जो देखने से बिल्कुल देहाती नजर आता है और उसके कपड़े बहुत मैले कुचैले हैं। वो कहता है कि वो तुम्हारे गांव का रहने वाला है और तुमसे कोई बात करना चाहता है। कहने लगी कि मैं हैरान कि गांव का लड़का क्यों उससे बात करने के लिए आ गया है। मैं चूंकि लड़की थी और गांव के मुख्तलिफ के लड़के लड़कियों को मुख्तलिफ इशारे करते रहते हैं, लिहाजा मैं समझी कि ये कोई वक्त जाया करने वाला लड़का आ गया होगा इस किस्म का फजूल। बाद में क्लास की बात कीजिए, ठीक है। तो कोई फजूल किस्म का लड़का आ गया होगा बाहर, जैसे कॉलेजों में हमारे मुसलमान मुल्क इस्लामी जमहूरिया की गर्ल्स कॉलेजेस जो होती हैं उनके सामने जो है वो लाइन लगी हुई होती है लड़कों की, इस तरह के, ठीक है, तो उस तरह का कोई लड़का आ गया होगा। तो लिहाजा मैं समझी कि ये कोई वक्त जाया करने वाला लड़का आ गया होगा, लिहाजा मैंने जाने में सुस्ती की। सख्त सर्दी थी और आने वाला बाहर दरवाजे पर सर्दी में ठुठर रहा था। काफी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जाके देखूं तो सही, क्या आखिर वो कौन है। तो कहती है कि मैं जब हॉस्टल के दरवाजे पर आई तो मैंने अपने भाई को खड़े हुए देखा जो सर्दी से ठुठर रहा था। मैंने उससे कहा कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे भाई हो। उसने कहा कि देखो मेरे कपड़ों के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, सीमेंट लगा हुआ है, कंक्रीट लगा हुआ है, देखने में मेरा हाल बुरा है। अगर मैं बता देता कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो तुम्हारी क्लास वालों के दरमियान तुम्हारी क्या इज्जत बाकी रहती। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ कहा कि मैं तुम्हारे गांव का बंदा हूं और मैंने भाई होने का तारुफ नहीं करवाया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है ना, बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि उसके बोलने के आगे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, कितनी अकल का मुजाहरा किया, ये नहीं बताया कि मैं भाई हूं ताकि लोग जो है ना वो उसके बारे में बुरा ना सोचें, जैसे कि दुनिया के एक होता है भाई। तो हमने किसी से बात हो रही थी, बल्कि क्लास में ही पहले बात हो रही थी कि तरीका तो ये है कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन कम से कम हम इतना ही अगर कर लें ना कि अगर पहले बोल दिया तो बाद में तोल लें कि क्या बोल दिया। हम तो ये भी नहीं करते, बोल भी देते हैं बाद में भी नहीं तोलते कि हम क्या बोल चुके हैं, ताकि उसको कुछ तो पैचअप वगैरह कर सकें। ठीक है, आगे कहते हैं कि वो कहने लगी कि ये सुन के मैंने हैरानगी से भाई की तरफ देखा और मैंने उसके कपड़ों से मिट्टी वगैरह झाड़नी शुरू की। वो मुझे रोक रहा था कि ये तो मेरी रोज की रूटीन है, मैं तो इन्हीं कपड़ों में जिंदगी गुजारता हूँ। मैंने उसे कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, आपको बताना चाहिए था कि आप मेरे भाई हैं। जब मैंने कुछ मिट्टी झाड़ ली तो मेरे भाई ने अपनी जेब में हाथ डाला, उसकी जेब में एक तितली वाला बहुत खूबसूरत हेयर क्लिप था जो औरतें अपने लंबे बालों पे लगाती हैं। उसने वो हेयर क्लिप निकाला और कहने लगा कि मैं बहुत ही तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा बचत तो नहीं थी, थोड़े से पैसे ही बचे। चूंकि मैंने तुम्हारे पास आना था तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेकर जाऊं। मैंने देखा है कि गांव की अक्सर लड़कियां ये हेयर क्लिप लगाई फिरती हैं, तो मैं तुम्हारे लिए भी ये लेकर आया हूँ। तो फिर उसने वो क्लिप मेरे सर के ऊपर रखा और कहने लगा कि ये तुम्हारे बालों के साथ बहुत अच्छा मैच करेगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलने के लिए जाते हैं तो तोहफा लेकर के जाना, ये भी एक बहुत ही अच्छे अखलाक होते हैं। वो कहने लगी, कहती है कि भाई की इस मोहब्बत को देख के मुझसे ना रहा गया। मैंने अपने छोटे भाई को प्यार किया और कहा कि तुम इतनी मेहनत की जिंदगी गुजार रहे हो और इस हाल में भी तुम्हें अपनी बहन के लिए तोहफा लेना याद है। कहने लगा कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, आखिर तुम मेरी बहन हो। उस वक्त मेरे भाई की उम्र 24 साल थी और मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी का वक्त हमारे दरमियान में आ चुका था। मैंने भाई को फिर रुख्सत किया तो उसने जाते हुए मुझे तसल्ली दी कि खर्चे की तरफ से घबराना नहीं, जो भी मेरे पास बचत होगी मैं तुम्हें भेजूंगा, कुछ तुम्हें अब्बू भेज रहे हैं और कुछ मैं भेजूंगा, इससे तुम्हारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुम अपनी तालीम अच्छी तरह से हासिल करना। कहने लगी कि वो यूं चला गया। फिर कुछ साल गुजरे तो मेरी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो गई। अब मेरे पास अच्छी शख्सियत भी थी और अच्छी तालीम भी थी, चुनाचे मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया। लड़का पढ़ा लिखा था, उसके पास अच्छी डिग्री थी, लिहाजा उसके साथ मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे खाविंद को मेरे भाई की कंपनी में डायरेक्टर की जॉब मिल गई। ठीक है, कुदरतन, अब जाहिर है गाँव में बहुत सारी कंपनियां, तो कोई कोई सिटी में तो ऐसा नहीं होता ना, मतलब सिटी की तरह तो नहीं होता ना, तो वहां पर एक ही फैक्ट्री होगी, तो उसी फैक्ट्री के अंदर उसको जॉब भी मिल गई और उसी के जो है ना वो यानी मैनेजर से जो है वो इस लड़की की शादी हो गई। कहने लगी कि चंद दिनों के बाद मेरे खाविंद ने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई बहुत मेहनत तो और थकन वाला काम करता है, तुम उससे पूछ लो, अगर वो चाहे तो मैं उसको सुपरवाइजर की सीट पर प्रोमोट कर देता हूँ ताकि उसको ज्यादा मुशक्कत वाला काम ना करना पड़े। मैंने जब भाई से पूछा तो उसने बहुत सख्ती की, नहीं मुझे प्रमोशन नहीं देनी, मैं इसी पर काम करता रहूंगा, लिहाजा मैं खामोश हो गई। कुछ दिनों के बाद मेरा भाई सीढ़ी पर चढ़कर बिजली का कोई काम कर रहा था कि अचानक उसको बिजली का झटका लगा और वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसकी टांग पर एक जख्म आया और वो बेहोश हो गया, चुनाचे उसको इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया। जब हमें इत्तला मिली तो मैं अपने खावन के साथ उसकी बीमार पोशी के लिए गई, तो उस दौरान मेरे खावन ने फिर ये मौजूद छेड़ा कि उसको क्या जरूरत है इतना मुश्किल काम करने की, मैं उसको प्रमोट कर देता हूँ, उसका काम आसान हो जाएगा। लिहाजा मैंने फिर भाई से कहा कि भाई आप क्यों प्रमोशन नहीं लेना चाहते। भाई ने बड़ा संजीदा मुंह बनाकर कहा कि देखो तुम्हारा खावन अभी अभी डायरेक्टर बना है, अगर ये एक अनपढ़ लड़के को सुपरवाइजर बना देगा तो कंपनी में इसकी क्या इज्जत रहेगी, तुम्हारे खावन खावन की इज्जत की वजह से मैं प्रमोशन नहीं चाहता, मैं जैसा हूं वैसा ही सही हूं। कहती है कि मैं अपने भाई की तरफ देखकर हैरान हो रही थी कि उसको अपनी बहन का कितना एहसास है कि बहन के खाविंद की इज्जत खराब ना हो और खुद ये तंगी की जिंदगी गुजारने पर भी राजी रहे। ठीक है, अब ये नॉन मुस्लिम मुआशरा है, इसको नबी अलैहिस्सलाम को कभी मोस्ट लाइकली नहीं पता था, दीन इस्लाम का नहीं पता था, सूरह हुजरात के अंदर जो बेहतरीन तालीमात हैं, सूरह बनी इसराइल के अंदर जो हुकूक इबाद की तालीमात हैं, कुछ भी इसको नहीं पता होगा। लेकिन ये चीजें क्या होती हैं, इसको कहते हैं फितरत, इसकी फितरत जो थी ना वो मस्ख नहीं हुई हुई थी, तो तो फितरत एक ऐसी चीज होती है जो कि दीन के बगैर भी जो है ना, ईमान के बगैर भी अगर फितरत अच्छी हो इंसान की तो उसके अंदर अच्छे अखलाक होते हैं। ये मुश्रिकीन मक्का में भी चंद ऐसे लोग थे कि जो फितरतन अच्छे लोग थे, और वो कुफर के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे होते थे, अगरचे कि ईमान नहीं लेकर के आए थे। ठीक है, फितरत एक ऐसी चीज है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान जो है वो अपने रब को पहचान लेता है। ठीक है, तो कुछ पता नहीं हमें कि फितरत की वजह से किसी ने जो है वो रब को पहचाना हो और उसकी वजह से वो शिर्क से अपने आप को बचा गया हो। बेशक उसको नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ना पता चला हो, कुरान के बारे में ना पता चला हो, लेकिन शिर्क से बच गया हो, क्योंकि फितरत के अंदर जो है वो तौहीद है। ठीक है, तो फितरत की तौहीद की बुनियाद पर जो है ना वो इंसान को अल्लाह ताला किसी तरह से या तो ईमान की तौफीक दे देंगे, या हो सकता है कि फितरत में चूंकि वो शिर्क से बचा रहा, कुफर से बचा रहा, तो उसके साथ जो है वो बाद में अच्छा मामला हो जाए। बहरहाल ये अल्लाह ताला को पता है, हमें ये बातें नहीं पता, लेकिन फितरत बड़ी अहम चीज़ होती है। जिसकी फितरत बुरी होती है और वो फितरत को अच्छा करने के ऊपर मेहनत नहीं कर रहा होता ना, तो मुसलमान भी होने के बाद उसने तकलीफ ही पहुंचानी होती है अपने बंदों, अपने साथ रहने वालों को, अपने घर वालों को, अपने पड़ोस वालों को, अपने दफ्तर वालों को, अपने दुकान वालों को, बिजनेस वालों को तकलीफ ही पहुंचानी होती है किसी ना किसी वजह से। ठीक है, ये एक बुनियादी चीज है, फितरत का सही होना और फितरत का सही करना। अगर वो सही नहीं है, इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे कि जो कि दीनदार नहीं होते, लेकिन वो फितरतन जो है ना, यानी जिसको कहते हैं ना सादे लोग हैं, सीधे लोग हैं, सही लोग हैं, ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेहतर इंसान नजर आ रहे होते हैं, बजाय इसके कोई लंबी दाढ़ी वाला हो और बड़ा जो है वो किताबें पढ़ी हुई हो और बड़ा जो है वो दीन की बातें करता हो और दीन की जो है वो काम करता हो, लेकिन फितरत उसकी सही नहीं है, तो अजियत दूसरों के लिए, अजियत दूसरों के लिए, तकलीफ बीवी के लिए भी, तकलीफ का सबाब, बीवी है तो शौहर के लिए तकलीफ का सबाब, आलिमा बनी हुई है लेकिन तकलीफ का सबाब, अजियत का सबाब, आलिम बने हुए लेकिन अजियत का सबाब, ठीक है ना, हाफिज बने हुए लेकिन दूसरों को अजियत पहुंचाना। ठीक है, तो फितरत के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है इंसान की, अगर वो पहले से ठीक ना हो तो। वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि जब मेरा भाई 30 साल का हो गया तो उसने गांव की एक लड़की से शादी की। शादी के महफिल में गांव के सब लोग, रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, महफिल भरपूर थी। शादी के सब इंतजाम की देखभाल करने वाले बंदे ने जब देखा कि मेरा भाई दूल्हा बना हुआ है और दुल्हन भी यहाँ पर है और सारे लोग इस तरह साथ हैं, तो उसने अचानक मेरे भाई से सवाल किया कि अच्छा ये बताओ कि दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है। ये एक गैर मामूली सवाल था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस माहौल में अचानक कोई ऐसा सवाल करेगा। बहरहाल जैसे ही उसने सवाल किया तो मेरे भाई ने जवाब दिया कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बहन से है। तो उस बंदे ने फिर सवाल किया कि तुम्हें अपनी बहन से मोहब्बत क्यों है। तो भाई ने वाकया लिखा, वाकया सुनाया और कहने लगा कि जब हम छोटे थे तो हमारा घर एक गाँव में था, जबकि हमारा स्कूल दूसरे गांव में था, हम पैदल अपने स्कूल रोजाना जाया करते थे। जाने और आने में हमें 2 घंटे लगते थे, घंटा जाने में और घंटा वापस आने में लगा करता था। ठीक है ना, वाकई यानी गांव वगैरह में आज भी पाकिस्तान इंडिया वगैरह में इस तरह के मामला होते हैं कि इतना इतना लंबा सफर करके लोग जो है वो अपने मदरसे जाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, जहाँ भी काम करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक ग्लव, हाथ पर पहनने वाला दस्ताना, गुम हो गया। बहन ने जब ये देखा तो उसने अपना दस्ताना उतार के मुझे दे दिया और कहा कि भाई आप ये पहन लो। मैंने कहा कि सर्दी तो सबके लिए एक जैसी है, आपको भी लग रही है। तो मेरी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी जेब में अपना हाथ छुपा लूंगी। चुनाचे मैंने अपनी बहन का दस्ताना पहन लिया। जब हम घर पहुंचे और हमने अपने गर्म कपड़े उतारे तो मैंने अपनी बहन के हाथ को देखा कि सर्दी की वजह से वो सुर्ख हो चुका था, जैसे खून उसमें जम गया हो, और उसके नाखून तकरीबन नीले हो चुके थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन ने झूठ कहा, मेरी खातिर उसने इतनी सर्दी को बर्दाश्त किया और मुझे उसने दस्ताने पहना दिए। कहने लगा कि उस वक्त मैंने दिल में ये नीयत कर ली थी कि जिस बहन ने मेरी तकलीफ का इतना ख्याल किया है, मैं पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा। जिसने मेरा इतना ख्याल किया है, मैं पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा। ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं एहसान बंदी, है ना। जिसने एहसान किया ना, उसका एहसान फरामोश होना या उसको नुकसान पहुंचाना और उसको तकलीफ पहुंचाना, ये अच्छी अच्छी फितरत वाला इंसान ये कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक ईमान वाला जो है वो फिर सबसे ज्यादा एहसान अल्लाह ताला का मानता है, नबी अलैहिस्सलाम का एहसान मानता है। लेकिन अगर कोई ईमान वाला नहीं भी है तो वो भी अपने इंसानों के साथ जिनके साथ रहता है तो उनके एहसानात को ना फरामोश नहीं करता, ठीक है। तो इस लड़के ने एहसान फरामोशी का बिल्कुल मुजाहरा नहीं किया बल्कि अपने दिल के अंदर नियत कर दी। भाई ने जब ये वाक़या सुनाया तो खूब तालियां बजी, गांव के सारे लोग इस बात पर खुश थे कि तेरी बहन ने इतनी कि तुम्हारी बहन इतनी अच्छी है कि जिसने दस्ताने तुम्हें पहना दिए और तुम्हारी तकलीफ का ख्याल रखा। वो कहती है कि सब लोग तालियां बजा रहे थे और मैं रो रही थी कि मेरा रोना खुशी की वजह से नहीं था बल्कि मुझे इस बात पर रोना आ रहा था कि ये शादी जैसे खुशी के मौके पर मेरे भाई ने मेरा राज फाश कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक अच्छा काम किया था उसको तो मैं उसको तो उसने पूरे गांव के लोगों में मशहूर कर दिया, लेकिन उसने मेरी जिंदगी में मेरा कितना साथ दिया, मेरी खातिर बाप की सजाएं बर्दाश्त की, जिल्लत बर्दाश्त की और गुर्बत की जिंदगी बर्दाश्त की, और ये बात उसने किसी को नहीं बताई। इसको कहते हैं मोहब्बत, ठीक है। इसको कहते हैं मोहब्बत कि जिससे मोहब्बत होती है ना उसकी छोटी चीज भी बड़ी लगती है और वो उसको बड़ा करके बयान करता है और अपनी तरफ से बड़ा काम कर दिया हो लेकिन उसको छोटा समझता रहता है। कल जिन लोगों ने हमारे हजरत का बयान सुना था कि अल्लाह को अपने बंदों से मोहब्बत है, इसकी क्या दलील हमारे मशायख देते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी, इतनी नेमतें दी, इतनी नेमतें दी कि उनका हिसाब करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अपने कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया की जो माल और मता है ना जो कि अल्लाह ने अपनी नेमत की तौर पे हमें दी है ना, हमने खुद तो नहीं कमाई, जो कुछ हमारे पास है हम खुद तो नहीं उसको पैदा कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीजें और वो हमें बतौर रिस्क दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कलील है सब कुछ। और हम अल्लाह ताला का जो जिक्र करते हैं कितना कर लेते हैं, है ना, कितना करते हैं, इतना था तो हमारी गफलत में जिंदगी गुजर रही होती है। 24 घंटे के दिन के अंदर इतने घंटों सो रहे होते हैं, इतने घंटों जो है वो बाथरूम में बैठे हुए होते हैं, इतने घंटों जो है वो खाना खा रहे होते हैं। बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले भी जो हैं वो भी यानी कितना कम जिक्र हो रहा होता है। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरा, है ना, जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें जो कि कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करती है, इसको कहते हैं मोहब्बत, है ना। अल्लाह और बंदे के दरमियान मोहब्बत होती है तो भी यही उसूल वहां पर भी चल रहा होता है, और बंदों बंदों के दरमियान मोहब्बत होती है तो वहां पर भी यही उसूल चल रहा होता है। तो इस भाई ने जो है ना बिल्कुल उसूल के मुताबिक मोहब्बत करी थी अपनी बहन से। अल्लाह ताला ने मर्दों को बड़े दिल दिए होते हैं, भाई अपनी बहनों के साथ हमेशा ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे एक बाप अपनी बहन अपनी बेटी के साथ करता है। अल्लाह ताला इन रिश्तों को मजबूत बनाए और ऐसा हमदर्दी करने वाला, मोहब्बत करने वाला, तहफ्फुज़ देने वाला और इज्जत करने वाला भाई हर बहन को अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। अगर मर्द ऐसे बन जाए ना तो फेमिनिज्म नाम की कोई चीज ही दुनिया के अंदर बाकी ना रहे, ठीक है। अगर मर्द जो है ना वो अपना काम करना शुरू हो जाए, जिम्मेदारी का एहसास उनको हो जाए, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी अच्छी आदतें और अच्छी ऐसी फितरतें जो है ना वो हम सबको और हमारी आलो आलो औलाद को प्राप्त करवाए। इस दुआ के साथ इस मौजू को तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया, वक्त हमारे पास अभी है तो हम जो अगला मौजूद किताब के अंदर से पढ़ना था उसको भी हम शुरू कर लेते हैं। किसी को कोई सवाल या कमेंट वगैरह हो तो वो उस चैट विंडो के ऊपर लिखें, कर लें इस पर। अगला जो मौजूद इस किताब में से पढ़ने का इरादा किया था वो मिसाली बेटा, क्योंकि अब दो ही बेसिकली बयानात रह गए हैं इस किताब के, एक मिसाली बेटा और एक मिसाली शागिर्द। तो चूंकि मकसद भी इस किताब को और इस सिलसिले को शुरू करने का जो था ना वो खानदानी ताल्लुकात, घरेलू अजदवाजी ताल्लुकात, ठीक है, सबसे ज्यादा तो अजदवाजी ताल्लुकात का टॉपिक था, तो उसमें जो सबसे हमें अहम समझ में आया वो हमने पढ़ा, फिर उससे कम अहमियत वाली चीजें भी पढ़ी। मिसाली बाप से ही शुरू किया था एक्चुअली, ताकि परवरिशी जो है वो अच्छी अगर होगी तो फिर अजदवाजी ताल्लुकात भी अच्छे से निभाएगा। फिर उसके बाद शादी करके जब वो खाविंद बन जाएगा तो उसके अंदर फिर अजवाजी ताल्लुकात को अच्छा करने के जो तौर तरीके हैं वो सारे के सारे मिसाली खाविंद के तहत पढ़े थे। फिर उसके बाद मिसाली सुसर के टॉपिक को हमने पढ़ा था इसके अंदर। फिर उसके बाद मिसाली दामाद के टॉपिक को हमने पढ़ा था। बड़ों से शुरू किया था और फिर छोटों की तरफ आए, बाप से शुरू किया था, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को सही तरह से यानी पनप यानी उसको परवरिश करते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं, तो उसने बड़े होकर के अच्छा काम करना होता है। तो परवरिश कौन करता है? बेटा बाप की परवरिश नहीं करता, छोटा बड़े की परवरिश नहीं करता, बड़ा छोटे की परवरिश करता है, ठीक है। तो इस नीयत से हमने फिर मिसाली बाप से शुरू किया था। तो मिसाली सुसर को पहले पढ़ा और मिसाली दामाद को बाद में पढ़ा। और फिर उसके बाद खानदानी ताल्लुकात में एक मिसाली बेटा भाई रह गया था जिसका भी बड़ा ताल्लुक होता है, जैसे कि अभी भी इस वाक्य के अंदर भी, कि भाई उसने अपनी बहन का घर बचाने के लिए भी ना, और बहन के शौहर के साथ जो है वो कितना यानी ख्याल किया उसका भी, कि उसकी भी इज्जत खराब ना हो और बहन का जो है रिश्ता जो है ना उसको कोई ठेस ना लगे, तो उसने इस्तफा अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि हबली मिनस्सालिहीन सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लम। क्योंकि खुतबा हजरत पढ़ते हैं कि बयान से पहले, तो वो हम सारा के सारा दोबारा से पढ़ लिया। फरमाते हैं कि साहिब औलाद होना इंसान की फितरी ख्वाहिश, ये भी अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के अंदर डाला है। शादी हो जाने के बाद हर इंसान की ये फितरी तमन्ना होती है कि मैं साहिब औलाद हो जाऊं, चुनाचे मर्द भी इसका ख्वाहिशमंद होता है और उसके लिए दुआएं करता है और औरत भी उसके लिए दुआएं करती है, ठीक है। जहां पर फितरत का ये वाला हिस्सा अपनी जगह पर कायम रह होता है तो वहां पर औलाद की ख्वाहिश होती है, जहां पर फितरत के इस वाले हिस्से को मस्क कर दिया गया तो फिर वहां पे औलाद की ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है और औलाद को इंसान जो है वो अवॉइड ही करता रहता है। लेकिन वो मस्कशुदा फितरत की के केस में ऐसा होता है, यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल फितरत वाली वाले इंसान की बात हो रही है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी इसके लिए दुआएं मांगी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी रब ला तजरनी फर्दा व अंत खैरुल वारिसीन, कि या रब मुझे अकेला ना छोड़िए और आप सबसे बेहतर वारिस हैं, ठीक है, अगरचे के बेटा देंगे तो वो भी मेरा वारिस होगा, लेकिन अल्लाह का मतलब ये नहीं है कि मैं बेटे ही को अपना असल वारिस समझना शुरू हो जाऊंगा, बल्कि असल वारिस तो मेरे आप ही हैं। किसी ने दुआ मांगी कि रब्बे हबली मिन सालिहीन, यानी किसी नबी ने गालबन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी ना कि मेरे परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो नेक लोगों में से हो, बेटे की भी दुआ करी और नेक बेटे की भी दुआ करी साथ साथ ही। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने तो बुढ़ापे तक दुआ मांगी, जब बाल सफेद हो गए और हड्डियां बुसीदा हो गई थी उस वक्त तक अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे। कुरान मजीद गवाही दे रहा है कि उन्होंने कहा रब इन्नी वहनल उज़्मु मिन्नी वश्ताअल रअसु शैबा, कि मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं और सर बुढ़ापे की सफेदी से भड़क उठा है, जैसे धूप सफेद होती है ऐसे सफेद हो गए मेरे बाल। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया, और मेरे परवरदिगार मैं आपसे दुआ मांगकर कभी नामुराद नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी अल्लाह ताला से दुआ भी मांग रहे हैं और अपना गुमान जो है ना वो अल्लाह ताला के साथ, और यानी अच्छा गुमान ये भी अल्लाह ताला को बता रहे हैं कि अल्लाह आपने तो कभी मुझे मायूस नहीं किया। और तो दुआ का जो है ना ये भी एक लाजमी हिस्सा होता है कि जुबान से अल्लाह ताला की तारीफ करे और अल्लाह ताला को बताए कि अल्लाह मैं आपके साथ बेहतरीन गुमान रखता हूँ, और अगर जुबान से ऐसे अल्फाज नहीं भी अदा कर रहा तो दिल में कम से कम अल्लाह ताला के साथ जो है ना वो बदगुमानी ना हो कि नहीं कबूल करेंगे नहीं सुनेंगे ये सब, ठीक है, इस तरह की बदगुमानी करके दुआ बिल्कुल ना मांगे बल्कि अच्छे गुमान के साथ ही मांगे। अभी भी मैं दुआ मांगता हूँ, आप चाहें तो अता फरमा सकते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और इस बुढ़ापे में अल्लाह ने उनको बेटा अता फरमाया, जकरिया अलैहिस्सलाम को यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाया। तो ये इंसान की एक फितरी तमन्ना होती है कि वो साहिब औलाद हो जाए। आगे बयान करते हैं कि बेटी और बेटे की तरबियत में फर्क। ठीक है, चले जो पीछे वाकये से अगर किसी के दिमाग में ये गलत फहमी पैदा हो गई थी कि नहीं जी बेटियों को भी यूनिवर्सिटी भेजो, बेटियों को जो है वो अच्छी शख्सियत जो है वो यूनिवर्सिटी जाकर के बनेगी, ठीक है, तो यहीं पे जो है ना वो क्या कहते हैं जैसे कि बाज बाज की तफसीर करता है। कुरान मजीद की तफसीर का सबसे पहला क्या उसूल है कि कुरान मजीद ही का दूसरा हिस्सा जो है ना वो कुरान मजीद ही के किसी दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। ठीक है, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम जो है वो उसके अंदर भी उसूल चलता है और अल्लाह वालों का जो कलाम है उसके अंदर भी उसूल हमने अभी देख लिया कि एक हिस्से के बारे में अगर कोई गलत फहमी होती भी तो उसी किताब के दूसरे हिस्से से वो गलत फहमी रिमूव हो गई। ठीक है, कि भाई बेटे और बेटे की तरबियत में फर्क होता है, उसको कमाने के ऊपर डालो, इसको कमाने के ऊपर ना डालो, इसको अच्छी अखलाकियात सिखाओ, इसको गृहस्थी सिखाओ, इसको वो सिखाओ जिसकी इसको जरूरत है, जिससे इसको फायदा होगा, है ना, कैसे जो है वो अपने घर को बनाया जाता है, कैसे अपने घर को बचाया जाता है, कैसे अपने घर को संवारा जाता है और कैसे अपनी औलाद को जो अल्लाह ताला तुम्हें नेमत देगा औलाद, उस औलाद को अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान कैसे बनाया जाता है, इन चीजों की जरूरत जो है वो औरत को पड़ने वाली है। शैतान जो है बिल्कुल उल्टा करता है ना, इनकलाब उम्मत, भी आप में से कोई पता नहीं वो है अभी क्लास के अंदर के नहीं है, उनसे बड़ी लंबी बात हुई कि हमारा तो पूरा इनकलाब हो चुका है ना, ऊपर का नीचे आ चुका है, नीचे का ऊपर आ चुका है। ठीक है, जिसको जो देना था हम उसको वो नहीं देते और जिसको जो नहीं देना था हम उसको वो देते हैं, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं इनकलाब, इनकलाब आ गया भाई, है ना, नीचे का ऊपर हो गया, ऊपर का नीचे हो गया, तो उम्मत का तो इस वक्त ये हाल है। और हम कहते हैं कि काफिरों से लड़ते क्यों नहीं है और अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद क्यों नहीं करते, नहीं। अजीब, हर तरह से ही इनकलाब आ चुका है, सोच में भी इनकलाब आ गया, कदम में भी इनकलाब आ गया। बहरहाल, तो बेटी और बेटे की तरबियत में फर्क होता है भाई। तो फरमाते हैं कि चूंकि बेटे और बेटी दोनों की जिन्स में फर्क होता है, शख्सियतों का भी फर्क होता है, इसलिए बेटे और बेटी की तरबियत में काफी फर्क पाया जाता है। ठीक है, लड़का अगर बिगड़ जाए तो लोग उसकी शख्सियत को तो बुरा कहते हैं मगर माँ बाप को बुरा नहीं कहते। एक आम यानी उर्फ की बात कर रहे हैं, ठीक है, उम्मीद तौर पर यानी लड़का जो है वो गंदे माहौल में चला गया और लड़का जो है उसने कोई यानी जना कर लिया तो माँ बाप को नहीं कहते, उसी को कहते हैं। ठीक है, जबकि बेटी का मामला और है, वो खानदान की इज्जत समझी जाती है, इसलिए उसकी तरबियत करते वक्त नेकी और हया की तालीम ज्यादा देनी चाहिए, है ना। अल्लाह ताला ने भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रखे हैं ना, कितनी दफा आप सुन चुके होंगे, हम तो रिपीट कर रहे होते हैं अपने मशाइख की बात को, हजरत जी ने भी इसको बयान किया है और बाकी मशाइख ने भी तफसीर के अंदर, कि भाई जहां चोरी के गुनाह की बात आई वहां पे फरमाया वस्सारिकतु वस्सारिक, ठीक है, सॉरी वस्सारिकु वस्सारिकतु, पहले जो है वो चोरी करने वाले मर्द का जिक्र किया, फिर चोरी करने वाली औरत का जिक्र किया, और जहां पे हया की बात आ रही है, जिना की बात आ रही है, वहां पे वज्जानियतु वज्जानी, तरतीब बदल दी, उलट दी। ठीक है, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट पर्सनालिटी दी है, डिफरेंट तकाजे दिए हैं, डिफरेंट अहकामात, सारे डिफरेंट नहीं है लेकिन बहुत सारे डिफरेंट भी हैं। ठीक है, तो इसको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कहेंगे, उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है, इसके लिए अलग स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हम तो जो है ना वो सबको एक ही बनाने की कोशिश करते हैं कि तरीके से अलग स्टैंडर्ड्स है। सही है, लड़की का बिगड़ना खानदान की बदनामी। ठीक है, तो भाई लड़के को यूनिवर्सिटी भेज रहे हो जहां पर के गलाजत और नजासत की इंतहा है, लड़की को भी उस यूनिवर्सिटी में भेज दिया जहां पर गलाजत और नजासत की इंतहा है, रूहानी नजासत, रूहानी गलाजत, राइट, तो क्या किया है फिर उसने, सही है, फिर क्या करना, फिर तुम्हारे साथ होगा क्या। लड़की से अगर ऊंच नीच होती है तो ये खानदान की बदनामी होती है, खानदान को धब्बा लगता है, इसलिए उसका मामला ज्यादा नाजुक है। और कुरान करीम से इसका सबूत भी मिलता है, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो वो बच्चे को लेके आई, कौम ने जब देखा कि एक जवान कंवारी लड़की बच्चे को उठा के ला रही है तो कहने लगी या मरियमो लकद जिती शैअन फरिया, मरियम तुमने तो बड़ा गजब ढा दिया, ये क्या तुम तूफान चीज लेकर के आई हो, क्या तुम लेकर के आई हो, है ना, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, ये क्या तूफान चीज उठा के ले आई हो, हम तो नहीं उम्मीद रखते कि तेरे यहाँ बच्चा होगा, तेरी तो अभी शादी नहीं हुई, रुख्सती नहीं हुई, तुम्हारे यहाँ बच्चा कैसे हो गया। ठीक है, फिर बात यहीं तक नहीं रही, बल्कि उन्होंने आगे भी बात बढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात याद आ गई, जैसे के साथ आज इसकी जो है वो आदत है, चीजें याद आती हैं तो बयान भी कर देते हैं। अभी वही जो भाइयों से बात हो रही थी पीछे, तो हमारे जो सर हैं, पूरी कौम के सर कौन है, वो हमारी पूरी कौम के सर, इंडिया पाकिस्तान के सर कौन है, बताए ना जल्दी से, हम सब के सर, उर्दू वाले भी और अंग्रेजी वाले भी। ठीक है, सर सैयद, तो सर सैयद अहमद खान ने क्या फरमाया, सर इंडिया पाकिस्तान के, कायदे आजम से भी बढ़ के सर, गांधी से भी बढ़ के सर, उन्होंने फरमाया कि मरियम अलैहि सलाम की तो शादी हो गई थी, और वो जो है ना, वो कौन था, नज्जार था, और ये तो ईसा अलैहि सलाम तो शादी से पैदा हुए थे, बगैर शादी के थोड़ी कोई पैदा हो सकता, मेरी अकल को तो ये बात समझ में नहीं आती, तो मैं क्यों कहूँ कि वो बगैर शादी के पैदा हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने तो लेकिन हमारे हैं वो सर, बहरहाल कुछ भी किया उन्होंने, हमारे तो सर ही रहेंगे, क्योंकि जो हमारे असल सर हैं उन्होंने उनको सर बना दिया, अब वो हमारे क्या कहते हैं सर आंखों पर, अब वो हमारे सर आंखों पर। ठीक है, अल्लाह हमारे साथ मेहरबानी का मामला फरमाए और हमें अकल सरी अता फरमा दे, तब शायद हमारी कुछ बात बने। बहरहाल, तो उन्होंने आगे भी बात बढ़ाई और कहने लगे, यानी वो जो बनी इसराइल के लोग थे जिनके पास मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आई थी, कहने लगे, या अख्त हारून मा कान अबू कि इम्रा सौइन व मा कानत उम्मु की बगिया, के ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था, ना तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। ठीक है, अमल तो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का था, लेकिन भाई माँ और बाप का तस्करा भी साथ में आ गया। क्या मतलब, मतलब ये है कि जब कोई लड़की इस किस्म का फेल करती है ना, तो उसकी वजह क्या बनती है कि माँ बाप ने उसकी बुरी तरबियत की होती है, उसको एक गंदा माहौल मिला होता है। ठीक है ना, उसके माँ बाप जो है ना, उनका अपना किरदार अच्छा नहीं होता, इस वजह से घर की लड़की जो है ना, वो इस हद तक जाती है कि वो किसी मर्द के सामने जो है वो अपना जिस्म एक्सपोज करती है और ये वाली हरकत करती है। ठीक है ना, तो तुम्हारे तो माँ बाप ऐसे नहीं थे, क्या कह रहे थे ये लोग, तुम्हारे तो माँ बाप ऐसे नहीं थे, तुमने ऐसा कैसे कर लिया। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे करने वाली जो लड़कियां होती हैं उनके माँ बाप अच्छे लोग नहीं होते हैं, ये हमारे मशायख हमें समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कितना ज्यादा इस बात की फिक्र और कितना ज्यादा इसके ऊपर मुहतात रहने की जरूरत है, और हमारे यहाँ तो अल्लाह रहम करे कोई, अच्छा दुनियादारों की तो बात ही छोड़ दें, दीनदार लंबी लंबी दाढ़ी वाले, है ना, अभी जो वो क्या कहाँ की वॉर शुरू, यूक्रेन की वॉर जब शुरू हुई थी, या पता नहीं कौन सी वॉर शुरू हुई थी, तो वो लंबे लंबे तबलीगी लंबी लंबी दाढ़ियां है, बेटी को भेजा हुआ है उधर डॉम करने के लिए, और बमबारी हो रही है तो अब बेटी फंसी हुई है बाकी लोगों के साथ, राइट। और कितने लोगों को हम जानते हैं, कोई कनाडा अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा दुनियादार की बात मैं कर ही नहीं रहा, उनकी तो छोड़ देना, उनका तो कोई अल्लाह ही रहम करे, दीनदारों की बात हुई है ना, इंडिया के अंदर जो है वो बेंगलोर भेज रहे होते हैं पढ़ने के लिए, तो दूसरे मुल्कों में भेज रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो कनाडा भेज रहे होते हैं पढ़ने के लिए, तो यूके भेज रहे होते हैं पढ़ने के लिए, फलाने जगह भेज रहे होते हैं पढ़ने के लिए, और लड़की ने जो है वो वादे किए होते हैं, नहीं मैं आप फिक्र ना करें सब ठीक रहेगा, है ना, हमें कितना एतमाद है माशाल्लाह, लड़की बच्चों के ऊपर तो एतमाद है कि नहीं है, हमें शैतान पे सबसे ज्यादा एतमाद है, असल में मसला सारा का सारा पता है क्या है, हमें सारा एतमाद जो है ना वो किस पर है, हजरत शैतान के ऊपर, हजरत शैतान के ऊपर जितना एतमाद है ना उतना तो शायद हमें अल्लाह रसूल को तो छोड़ दें, मेरे साथ में हमें अपने एक दूसरे बहन भाई के ऊपर इतना एतमाद नहीं होगा जितना हमें हजरत शैतान के ऊपर एतमाद है, क्योंकि वही हमारे हजरत हैं, हमारे मशाइख क्या फरमाते हैं, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख कौन होता है, शैतान, तो शेख साहब को हजरत कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हजरत जी, हजरत, शेख साहब को हजरत ही कहते हैं ना, तो भाई जिसका शेख जो है वो शैतान है, तो फिर उसने हजरत शैतान ही कहना है ना फिर उसको। तो हजरत शैतान के ऊपर हमारा क्या एतमाद है, दूसरों को बहकाएगा मेरे बच्चों को नहीं बहकाएगा, राइट? मेरे दुश्मनों को तो वो बहकाता है, मेरे बच्चों को कोई थोड़ी बहकाएगा, वो तो मेरा दोस्त है। दोस्त दोस्त के बच्चों को बहकाएगा, दोस्त दोस्त के बच्चे से जो है वो गंदा काम करवाएगा, ये कैसे हो सकता है भाई? क्या कहते हैं इसको फिर? एतमाद ही कहते हैं ना इसको, इसको एतमाद नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? बच्चों पे एतमाद यार, रहने दो यार, खुदा के बंदी, खुदा की बंदी। जी मुझे अपनी बेटी पे बड़ा एतमाद है, जी मुझे अपने बेटे पे बड़ा एतमाद है, व्हाट अबाउट द शैतान? ठीक है, तो ना तुम्हारा बाप बुरा था, ना तुम्हारी माँ बदकार थी, तुम कैसे बन गई? तो चूंकि खानदान की बदनामी होती है, इसलिए बच्चियों की तरबियत हसास मामला है। ताहम बेटियों की तरबियत पे भी जितनी मेहनत करनी, बेटों की तरबियत पे भी जितनी मेहनत करनी चाहिए, शरीर ने उसके बारे में भी बहुत तफसीलात बताई हैं। दीन इस्लाम ने बच्चों को वालिदैन की इज्जत सिखाई है, ठीक है ना? अब इसके बाद हम बाकी चीजें इंशाल्लाह आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो शैतान की बात होगी तो रहमान की बात कैसे ना करें, ठीक है? तो जितना हमें शैतान पे एतमाद है कि हमारे बच्चों को नहीं बहकाएगा, ठीक है, उतना ही हमें जो है ना वो रहमान पर एतमाद नहीं है। रहमान के साथ हमारा क्या मामला है कि हमने तो कोई किया ना, मैंने कोई बुरा काम किया, ठीक है, ना जो है वो किसी और ने कोई बुरा काम किया, रहमान ही खामखा में जो है ना वो हमें जलील रसवा करता रहता है, राइट? रहमान जो है अल्लाह अर रहमान अर रहीम, कभी जो है ना वो दुनिया के काफिरों के सामने जलील करते रहते हैं, कभी जो है वो अजाब देते रहते हैं, कभी जो है वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हालांकि हमने कोई बुरा काम नहीं किया था, हमने जो है वो गुनाह नहीं किए थे, हमने रहमान को जो है वो उतना ही कदर करी थी जितनी हमें करनी चाहिए थी रहमान की, हमने उसके हुक्मों को उतनी ही अहमियत दी थी जितनी अहमियत देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है अल्लाह ताला को, पता नहीं क्या हो जाता है रहमान को, खामखा जो है वो हमें अपने दुश्मनों के सामने और अपने दुश्मनों के सामने और हमारे दुश्मनों के सामने जो है वो जलील और रसवा करता रहता है, उनके हवाले करता रहता है, राइट? पूरे काफिरों को उठा करके जो है वो सारे के सारे इस्लामी मुल्कों के ऊपर जो है ना वो सरदार बना दिया, कोलोनियलिज्म का जो है वो सारे इस्लामी मुल्कों को जो है शिकार कर दिया, हालांकि हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था, और हम ना हम पहले बुरे थे ना हम अभी बुरे हैं, अभी भी हम बिल्कुल अच्छे हैं, पहले भी बिल्कुल अच्छे थे। रहमान को भी ये बातें पता थी, तो उसने भी जो है ना फिर हुज्जत नहीं छोड़ी, हमारे हुज्जत तमाम कर दी, कोई लूप होल छोड़ा ही नहीं। रहमान ने फिर अपने कलाम के अंदर क्या फरमाया, वमा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन कफरतुम इन शकरतुम व आमनतुम, यही आयत है अब साहब कि अल्लाह ताला को क्या मिलेगा तुम्हें अज़ाब दे करके, अगर तुम ईमान लाओगे, अगर तुम शुक्र करोगे और ईमान लाओगे, अल्लाह ताला को क्या मिलेगा तुम्हें, जलील और रुसवा करके, काफिरों के हवाले करके, पूरी दुनिया में पस्त करके कि तुम कुछ करने के काबिल नहीं हो, किसी लायक नहीं तुमको छोड़ा, अल्लाह को क्या मिलेगा ये सब करके तुम्हारे साथ, अगर तुम शुक्र करो, अगर तुम ईमान लेकर के आओ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की बातों के ऊपर। लेकिन हमें अल्लाह के ऊपर एतमाद नहीं है, हम सिर्फ ये कि हमारा क्या ईमान है, हमने कोई गलत नहीं किया, बस अल्लाह ताला ने ऐसे ही कर दिया बस सब कुछ, गोया कि नाऊज बिल्ला अल्लाह को मजा आता है, अल्लाह को कोई 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 होता है ना जो नाऊज बिल्ला अजियत दे करके लोग उठाते हैं ना मजा, तो अल्लाह को भी हमने ऐसे ही, या ये कि दो सूरतें, दूसरी सूरत ये है ना तो शैतान है कि वो किसी को गुमराह करे, मेरी औलाद को गुमराह करे, ना रहमान है कि वो किसी की सजा का सबब कोई किसी को सजा दे, बस ये सब चल रहा है, बस ऑटोमेटिकली चल रहा है सारा मामला, लोग नेकी भी खुद से करते हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान हजरत ने यही फरमाया था ना कि अपने अंदर ही सब कुछ होता है, बस वो शैतान वैतान कोई चीज नहीं है, जिन विन कुछ नहीं होते, फरिश्ते वरिश्ते कुछ नहीं होता, बस इंसान की अपनी इंस्टिंक्ट होती हैं, उसी बुनियाद पर अच्छा काम कर लेता है, उसी बुनियाद पर बुरा काम कर लेता है। तो डिनायल ऑफ द शैतान और डिनायल ऑफ रहमान, डिनायल ऑफ रहमान कि दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है ये तो बस इस पार्ट ऑफ द, इस पार्ट ऑफ लाइफ, राइट, खुद ब खुद हो रहा है सब कुछ, अल्लाह ताला का इसमें कोई अमल दखल है ही नहीं। तो इसको या तो अल्लाह के ऊपर इल्जाम दो ये कर रहे हैं हम, या अल्लाह ताला का इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला है ही नहीं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है सारे कामों के साथ। अब हम सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ अन अलहम्दुलिल्लाह आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।